अब ऐसे में क्या होता है कि एक ही सुझाव दिया जा सकता है कि विशेषार्थ को छोड़कर मूल को ही पढ़ना अपने लिए हितकारी है, क्योंकि ऐसे विशेषार्थों को पढ़ेंगे आप। अभी इसके दूसरे सूत्र का विशेषार्थ जो है, पहले अध्याय का जो दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसका विशेषार्थ आप पढ़ोगे ना तो फिर ये पुरानी प्रति है और जो वो नवी प्रति है आपके सामने, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा आपको। इसमें कुछ और ही लिखा है और इसमें बल्कि सही लिखा है, वो विशेषार्थ तो सही लिखा है लेकिन उसमें उन्होंने फिर लीपापोती कर दी। तो जिसकी बात हमेशा अदल बदल करती रहे उसकी बात को प्रामाणिक माने कि जैन सिद्धांत जो है, जो त्रिकाल में खंडित नहीं होता, अकाट्य रहता वही रहता है, उसको प्रामाणिक माने। तो इस पर अभी काफी एक क्रांति जैसी उत्पन्न हो रही है इस विशेषार्थ को लेकर के। अभी एक पुस्तक भी आई थी पर्युषण पर्व में, अभी भी रखी होगी यहाँ पर, उसमें इस बात को लेकर के विशेष रूप से पंडित जी ने उसका विरोध किया है। क्योंकि ऐसा मानने पर क्या होता है, इसमें जो बातें लिखी है, ऐसा मानने पर तीर्थंकर भगवान वीतराग होते हुए भी कर्ता सिद्ध होते हैं। कर्ता सिद्ध होते माने सब प्राणियों का भला करते हैं, ये बात सिद्ध होता है, होती है तीर्थंकर भगवान के विषय में। और अपेक्षा से अपन विचार करो और फिर इस सूत्र की टीका पर ध्यान दो तो वास्तव में भगवान ही प्राणियों का भला करते हैं, ये बात रहस्य के रूप में खुल करके सामने आएगी अंततः। भगवान के बिना न तो कोई संसार से पार हो सकता है, न कोई आत्मा का किसी प्रकार से आंशिक रूप से भी कल्याण कर सकता है। भगवान का निमित्त और भगवान का उपकार आत्मकल्याण में नितांत आवश्यक है। और ये बात थोड़ी गहरी है इसलिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ इतना ही समझ लो कि ये जो विशेषार्थ है ये निस्संदेह है, भ्रामक है। सब तो नहीं है लेकिन जहां इनने अपना मस्तिष्क ज्यादा लगा दिया उतने विशेषार्थ दूषित हो गए। प्रथम अध्याय में मोक्ष का उपाय रत्नत्रय है, फिर रत्नत्रय के जो तीन अवयव है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, उनमें से सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का निर्देश किया। निर्देश यानी सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है ये बतलाया। फिर उसके पश्चात उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, फिर सम्यक्त का विषय क्या है, और उसके बाद जीवादि और सम्यक दर्शन आदि को जानने के जो उपाय हैं प्रमाण और नय, उनके बारे में उल्लेख करके फिर और भी जो दूसरे उपाय हैं उनका कथन किया। निर्देश स्वामित्वादि और सत्संख्यादि, और फिर सम्यक ज्ञान का वर्णन चला। तीसवें सूत्र तक सम्यक ज्ञान का वर्णन पूर्ण हो गया और फिर पांचों भेदों का स्वरूप और विषय सब बतलाने के पश्चात ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं मिथ्यात्व के संपर्क से, इस बात का खुलासा करते हुए तीन मिथ्या ज्ञानों का वर्णन किया। मिथ्या ज्ञानों की परिणति कैसी होती है उसका भी खुलासा कर दिया 32वें सूत्र में, और 33वें सूत्र में जो नयों की बात चली थी, शुरू शुरू में एक सूत्र आया था प्रमाण नयी रदिगम 5वां सूत्र, तो उसमें नयों की जो बात थी उसमें 7 प्रकार के नयों का वर्णन किया। और 7 नयों में मूल तो आगम में 2 नये हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। फिर उन 2 नयों के ये सारे भेद हैं, नयगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। तो इनमें नयगम संग्रह और व्यवहार ये 3 द्रव्यार्थिक नये हैं और बचे हुए जो 4 हैं वो पर्यायार्थिक नये हैं। इस प्रकार नयों का वर्णन पूर्ण करके प्रथम अध्याय समाप्त होता है। और नयों में जो व्यवहार नय यहाँ बतलाया गया है आगम में, वो और जो व्यवहार नय अध्यात्म में बताया जाता है, वो एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार नय में संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ का विभाजन किया जाता है। जैसे द्रव्य, ये एक शब्द संग्रह नय द्वारा कहा गया, इसमें जीव अजीव के भेद प्रभेद कुछ भी नहीं, संग्रह नय ने संग्रह कर दिया द्रव्य। अब व्यवहार नय क्या करेगा? जहां तक भेद प्रभेद हो सकते हैं वहां तक भेद करेगा, प्रभेद करेगा। ये व्यवहार नय का कार्य है। और वहां पर जो अध्यात्म में व्यवहार नय है, उस व्यवहार नय में क्या होता है? उस व्यवहार नय का कार्य केवल इतना है कि दो वस्तुओं को भी मिलाकर बताना। जैसे उदाहरण दिया था, वासुपूज्य भगवान लाल थे। अब लाल कभी भी जीव नहीं होता, लाल होता है पुद्गल, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल के गुण होते हैं। लेकिन व्यवहार नय जिस शरीर में जीव निवास कर रहा है, संसारी जीव की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त जीव तो शुद्ध जीव है, उनके साथ कोई पर संयोग नहीं है, कर्म नो कर्म कुछ नहीं लगा सिद्ध भगवान में। लेकिन संसारी जीव में तीन हिस्से हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि संसारी जीव के पास तीन हिस्से होते हैं। एक तो उसके ज्ञानादि गुण, दूसरे उसके रागादि विकार, और तीसरा शरीर। मतलब ये हुआ कि संसारी जीव के पास स्वभाव भी होता है, विभाव भी होता है, और शरीर भी होता है। ये तीन हिस्से संसारी जीव के हैं। तो इसलिए अरहंत भगवान जब तक सिद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक वो शरीर का रंग भी अरहंत भगवान का रंग कहा जाएगा। ये व्यवहार नय का कार्य है। लेकिन निश्चय नय के वक्तव्य में इसका निषेध है। निश्चय नय आत्मा को शरीर रहित मानता है, क्योंकि निश्चय चयात निष्क्रांत है, चय माने समूह, समूह से जो निष्क्रांत है, परे है, उसको निश्चय कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि निश्चय नय की दृष्टि में एक ही वस्तु पकड़ में आती है। तो अब एक को पकड़ोगे तो फिर अशुद्धि का सवाल ही नहीं है। अशुद्धि तब आती है जब दो या तीन, मतलब कहीं ना कहीं मिलावट हो तो अशुद्धि पैदा होती है। मिलावट ही जिसकी दृष्टि में नहीं है, उसकी दृष्टि में सब वे शुद्धा हो शुद्ध नया, उस शुद्ध नय की अपेक्षा सब शुद्ध ही है। नियमसार में तो आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा कि सब वे सिद्ध समाणा शुद्ध नया संसिधि जीवा। संसार में जितने जीव हैं वे सब शुद्ध नय से सिद्ध भगवान के समान है, ये बात कह दी। लेकिन निश्चय नय से और व्यवहार नय से उलझन में नहीं पड़ना विवेकी का कर्तव्य है। क्योंकि पहले अध्याय के अंत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी मार्मिक बात कही है कि वस्तु का स्वरूप एक नय से पकड़ में नहीं आता, सभी नयों से जब आप वस्तु को समझो तब वस्तु समझ में आती है। जैसे छेड़ाला में कहा ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपकू भरमत वादी। क्या अर्थ है इसका? मोह रूपी महामद, बड़ी मदिरा, छोटी मदिराएं तो यहां पर सब लेते रहते हैं, लेकिन वो महामद उसको अनादिकाल से पीकर जीव आपको भूल, अपने आप को भूल करके भ्रमत वादी, व्यर्थ भटकता रहा, भ्रमण करता रहा, अभी भी कर रहा है। तो यहां पर अपने आप को भूलने का मतलब क्या है? और अपने आप को जानने का मतलब क्या है? क्या इतना जान लेना अपना आत्मज्ञान कहलाएगा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है? ये आत्मा का ज्ञान हो गया इतने में? नहीं, क्यों नहीं हुआ? यही तो आत्मा का स्वरूप है, उपयोग लक्षण आगे आएगा इसी में सूत्र। लक्षण जरूर हुआ, उपयोगो लक्षणम। लेकिन जब तक थोड़ी और गहराई में अपना ज्ञान नहीं जाता तब तक वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए जीव को जानने के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों दृष्टियां, दोनों नयों का आलंबन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए समयसार ग्रंथ की टीका में आचार्य अमृत चंद स्वामी ने वही बात दृष्टांत दिया था ना, द्रव्यार्थकं चक्षु निमीलनम विधाय यदा पर्यायार्थिक नयम उपेत्य पश्यति तदा नर नारक आदि नाना पर्यायान पश्यति। जब द्रव्यार्थिक नेत्र को बंद कर लेता है, पर्यायार्थिक नय से देखता है, तो फिर निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय, सारी पर्याय आ जाती है दृष्टि में। और फिर इसके बाद पर्यायार्थिक नय वाली आंख को बंद करता है और अब द्रव्यार्थिक नय से देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ एक त्रिकाली सत्ता वाला वो जीव पदार्थ, जीव द्रव्य नजर आता है। अब आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अब इन दोनों में से सही स्वरूप कौन सा है। दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना, पर्याय के बिना द्रव्य अधूरा है, द्रव्य के बिना पर्याय अधूरी है, अथवा ये कहो कि द्रव्य के बिना तो पर्याय होती ही नहीं है और पर्याय के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। तब फिर आचार्य कहते हैं कि दोनों आंखें खोल लो। दोनों आंखों को खोल लेने पर अब क्या दिख रहा है, अनंत पर्यायों में विस्तृत एक जीव द्रव्य। तो अब पर्यायों को जानने का उपाय और द्रव्य को जानने का उपाय क्या है। पर्यायों को जानने के लिए षटखंडागम की 20 प्ररूपणाएं हैं, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्तियां, प्राण आदि, बहुत लंबा विस्तार है। और द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को जानना हो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, तो परमागम अध्यात्म है। यद्यपि आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि मैं सिर्फ 47 शक्तियां बता रहा हूं, पर इतनी मात्र मत समझ लेना, जीव में अनंत शक्तियां हैं। जब जीव विग्रह गति से होते हुए मां के गर्भ में आता है तो पुद्गलों को शरीर का आकार देने की क्षमता किसके पास होती है। नाम कर्म के परमाणु जो उदय में आते हैं, उनके उदय में शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब तो तैयार हो जाता है, आकृति बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो नाम कर्म जब तक उस जीव की शक्ति के साथ नहीं जुड़ा, क्या है कि जीव में दो प्रकार की शक्तियां हैं ऐसे मोटे रूप से, एक भाववती शक्ति और दूसरी क्रियावती शक्ति। भाववती शक्ति मतलब उसमें भवन, परिणमन, बदलाव आते रहने की शक्ति, और दूसरी क्रियावती शक्ति का मतलब उसमें हलचली करने की भी क्षमता होती है जीव में, हलन चलन की शक्ति। और इसके अतिरिक्त एक स्वाभाविकी शक्ति, वैभाविकी शक्ति, एक उसकी स्वाभाविक शक्ति और दूसरी वैभाविक शक्ति है। अब वैभाविक शक्ति उस नाम कर्म के परमाणु में नहीं है, नाम कर्म के उदय में जीव का जो आकार शरीर जितना हो जाता है, चींटी मरकर हाथी बन जाए, हाथी मरकर चींटी बन गया, तो फिर जो आकृति में परिवर्तन आया है, आया नाम कर्म के उदय से है, पर आया किस में है, आया जीव में है ना। तो जीव में वो परिवर्तन स्वीकार करने की क्षमता है कि नहीं, उस परिवर्तन को प्राप्त करने की क्षमता है कि नहीं है। तो जीव में ऐसी कितनी शक्तियां हैं, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म के, भोजन जो पचता है अपने पेट में वो कैसे पचता है। अगर इसमें आप जीव की शक्ति को नकार दो तो दुनिया की कोई भी मशीन है क्या जो भोजन को पचा दे। वो सब मतलब ये सब वैभाविकी शक्ति के सब उत्तर भेद हो जाएंगे कि जीव पर संयोग में कर्मों के उदय में कितने प्रकार के विभाव कर सकता है, वो विभाव करने की शक्ति किसके पास है? जीव के पास है। इसलिए बड़ा अद्भुत द्रव्य है जीव, उसको समझने के लिए नयों का आलंबन लेना पड़ता है। और अब सम्यक दर्शन में सबसे पहले जो तत्वार्थों में श्रेणी में सबसे पहले जिसका नाम था जीव, फिर बाद में अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सब आए थे पूरे। तो अब जीव का वर्णन करने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र दे दिया कि जीव के निज भाव स्वतत्व किसको कहते हैं। देखो, विभाव भी एक प्रकार का स्वभाव है, इस पर ध्यान देना। विभाव भी एक प्रकार का स्वभाव है, क्योंकि वो विभाव किसका है? स्व अपना ही तो है। क्रोध कर रहे हैं अपन, क्रोध का कर्ता कौन है? अपन है या पुद्गल द्रव्य? अपन ही है। तो फिर ये स्वभाव के दो भेद हो गए। जो पर संयोग से विकारी भाव रूप होने वाला अपना स्वभाव है वो विभाव स्वभाव है, और जो पर निरपेक्ष अपने अंदर जो शुद्ध परिणमन होता है वो शुद्ध स्वभाव है। स्वभाव दो प्रकार के, विभाव स्वभाव और शुद्ध स्वभाव, या अशुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वभाव भी कह सकते हो। भाव समझना अपने को, तो दोनों प्रकार की परिणतियां अपनी ही हैं। इसलिए यहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज बड़े महत्वपूर्ण शब्द के साथ इस सूत्र को कह रहे हैं। कल हमने इस बात को नहीं खोला था, जीवस्य स्वतत्वम। ये पांच, कौन से पांच? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये पांचों जीव के स्वतत्व है, यानी स्वभाव है। तद्भावस्तत्वम आया था टीका में। वो जो भाव होता है, उसका जो भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। तो स्वतत्व का मतलब क्या हो गया? अपना भाव। तो ये अब इसमें देखिए, ये सारे के सारे शुद्ध स्वभाव रूप तो नहीं है। क्षायिक भाव है, ठीक है, क्षायिक भाव कर्म क्षय से प्रकट होने वाले पर निरपेक्ष भाव है, इसलिए वो शुद्ध स्वभाव है। और बाकी देख लीजिए कितने। औदयिक भाव देखो, औदयिक भाव तो जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है, उसी को तो विभाव कहते हैं। औदयिक भाव को कषाय कर रहे हैं, तो कषाय क्या है? विभाव है। लेकिन विभाव भी एक प्रकार का स्वभाव है। आ रहा है समझ में? समझने की बात है ये। तो जीवस्य स्वतत्वम, ये स्वतत्व शब्द बड़ा वजनदार है, इस पर ध्यान देना है। इसी प्रकार इष्टोपदेश में भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन पर ध्यान न देने के कारण भलताज अर्थ निकलता है। जो अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, कुछ और ही अर्थ निकलता है। एक नमूना बताएं, पूज्यपाद स्वामी द्वारा ही रचित है इष्टोपदेश ग्रंथ, सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता ही इष्टोपदेश के भी रचयिता है। वहां लिखा है, संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्मवान ध्यायेद आत्मनैवात्मनि स्थितम्। करण ग्रामम संयम्य, इंद्रिय समूह को रोक कर नियंत्रित करके, चेतस एकाग्रत्वेन मन की एकाग्रता पूर्वक, आत्मवान आत्मवान आत्मा वाला, धनवान किसको बोलते हैं? धन वाला। ज्ञानवान किसको बोलते हैं? ज्ञान वाला। और आत्मवान किसको बोलेंगे? आत्मा वाला। ये बहुत रहस्यपूर्ण शब्द है, आत्मवान। आत्मनैव, अपने ही द्वारा, आत्मनि स्थितम आत्मानम ध्यायेत, अपने में स्थित अपना ही ध्यान करे। अब बताइए आत्म ध्यान की ये विधि बताई उन्होंने, लेकिन ध्यान करने वाला कौन होना चाहिए? जो परिग्रहवान सो आत्मवान नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। परिग्रहवान धनवान हो सकता है लेकिन आत्मवान नहीं हो सकता। अब आत्मा शब्द के तीन अर्थ है शास्त्रों में, यहां कौन सा अर्थ निकालोगे? ऐसे बारीकी से जब अपन शोधन करते हैं और छांट करके रिसर्च करते हैं देखो अपने पास वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए और धार्मिकता भी होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि सत्य का पारखी बहकावे में नहीं आता, याद है आपको, माने पारखी होना भी आवश्यक है और धार्मिक होना भी आवश्यक है। जो कह दिया गुरु महाराज ने, बिल्कुल आंख बंद करके हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार कर लिया, उसमें शंका कुशंका का कोई स्थान न रहे। लेकिन तत्व निर्णय के समय, तत्व निर्णय के समय शंकाओं को छोड़ना नहीं, आदेश पालन के समय शंका करना नहीं, और तत्व निर्णय के समय शंका अवश्य करना। और वैसे ही आचार्य महाराजों ने इतनी शंकाएं करके रखी है कि अपने पास बचता नहीं, वैसे लगभग कुछ नहीं बचता पूछने को, सारा समाधान जिनवाणी में भरा पड़ा है, कुछ बाकी नहीं रहता, इतना अपार भंडार है आज। वो तो पंचम काल के अंत में तो बहुत क्षीण हो जाने वाला है, लेकिन आज अपने सौभाग्य से बहुत कुछ है, और पहले तो इतना था कि जिसकी तुलना में आज कुछ भी नहीं बचा, पहले इतना अधिक था। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान उनके पास था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें से कुछ पूर्व का ज्ञान घट गया, 10 पूर्वी कुछ मुनिराज हो गए, फिर घटते 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 फिर एक अंग बच गया, आचारांग, लोहार्य आदि कुछ आचार्यों को वो प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद वो भी समाप्त हो गया, और फिर सब अंग पूर्वों का थोड़ा थोड़ा फुटकर ज्ञान बच गया धरसेन आचार्य महाराज के पास। फिर उनके पास 2 मुनिराज पहुंच गए, सुबुद्धि और नरवाहन मुनि, जो आगे चलकर आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने षटखंड आगम की रचना की। और फिर एक गुणधर आचार्य भी हुए जिन्होंने कसाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। तो फिर वो श्रुत परंपरा चलती रही। तत्वार्थ सूत्र की 21वें सूत्र, पहले अध्याय के 21वें सूत्र की जो वृत्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, उसमें बहुत अद्भुत बातें कही हैं। जिनवाणी किसको माने, जिनवाणी के वक्ता कौन, तो बिल्कुल खुलासा कर दिया उन्होंने कि जिनवाणी परमेष्ठी के वचन है, जिनवाणी परमेष्ठी के वचन है। पहले वक्ता तो सर्वज्ञ भगवान है, वो तीर्थंकर इतरोवा, तीर्थंकर भी हो सकते हैं, इतर यानी दूसरे केवली भगवान भी हो सकते हैं, पहले वक्ता जिनवाणी के। दूसरे वक्ता कौन है, श्रुत केवली, श्रुत केवली यानी पूरे 12 अंगों का जिनको ज्ञान प्राप्त है, ऐसे महामुनि। श्रुत केवली को डॉक्टर हुकुमचंद भारी जी ने समय सार एक अनुशीलन में श्रुत केवली लोकांतिक देवों को, सौधर्मेंद्र को, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को उन्होंने मान लिया है, पर वहां वो 14 पूर्व के धारक हैं, 14 पूर्व 12वें अंग का एक विभाग है। पूर्ण 12 अंग का ज्ञान अलग चीज होती है और 14 पूर्व का ज्ञान होना अलग होता है, इसलिए 14 पूर्वधारी होते हुए भी वे लोकांतिक आदि देव श्रुत केवली की श्रेणी में नहीं आते। श्रुत केवली की श्रेणी में केवल वे मुनिराज आते हैं जिन्होंने जीवन में तपस्या को अंगीकार किया है, उस तपस्या के साथ होने वाली विशुद्धि से ही श्रुत ज्ञानावरण का उस वह उत्कृष्ट क्षयोपशम प्राप्त होता है जो उन मुनिराज को श्रुत केवली बना सकता है, सबके पास वो क्षयोपशम नहीं हो सकता। तो श्रुत केवली के जो वचन है वो भी जिनवाणी है, लेकिन फिर श्रुत केवली जब न रहे तब जिनवाणी किनके वचनों को मानोगे। तब आचार्य महाराज ने कहा कि गणधरों के जो शिष्य प्रशिष्य हैं, जिनको आरातीय आचार्य कहा है उन्होंने, वो आचार्य परंपरा के जो आचार्य देव होते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उनके वचन जो अंग बाह्य श्रुत रूप माने जाते हैं, अंग प्रविष्ट तो गणधर महाराज बतला गए 12 अंगों का वर्णन कर गए, फिर अंग बाह्य जो है, दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, ये सारा जो विभाग है, 14 प्रकार के उसके भेद हैं, ये सब अंग बाह्य श्रुत के प्रणेता आचार्य परमेष्ठी होते हैं, गणधर परंपरा वाले। और परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र आता है, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष जातम आगमा भाषम। राग द्वेष और मोह जिसके भीतर भरे हुए हैं उस मनुष्य से निकला हुआ जो ग्रंथ है वो आगम तो नहीं है, आगमा भास है। इसलिए शास्त्र के प्रणेता, जिनवाणी के रचयिता परमेष्ठी ही होना चाहिए, ये बात वहां पर क्लियर हो जाती है। और चार अनुयोग रूप जो विभाजन किया गया है वो भी आरातीय आचार्यों की देन है, क्योंकि पूरे 12 अंगों का विभाग अपने बस का नहीं था, उन्होंने फिर पंचम काल के अल्पमति, अल्पायु, अल्प बल वाले जो शिष्य थे उनके हित में 4 अनुयोग बता दिए। और फिर इस अनुयोग में भी बात वही है, और दृष्टांत दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, वो जिनेन्द्र भगवान का जो ज्ञान था वो तो क्षीर सागर था, और अब जो कुछ बचा है वो घड़े में उसी क्षीर सागर का थोड़ा सा जल भरा हुआ है, लेकिन चीज वही है। आए समझ, समुद्र में जो चीज है वो आज घड़े में है लेकिन है वो, कोई और नहीं है। इसलिए जिनवाणी इतनी पूज्य है, इतनी मान्य है। बाकी मनुष्य के मस्तिष्क के विचार बड़े अद्भुत हो सकते हैं, नए नए मत खड़े करने वाले मस्तिष्क भी संसार में पाए जाते हैं, लेकिन जहां तक जिनवाणी की बात है उसकी बात ही निराली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जिनवाणी में यह है कि इसमें पूर्वापर दोष नहीं पाया जाता, और बाकी जितने भी छद्मस्थों के मत हैं उनमें कहीं ना कहीं पूर्वापर दोष पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण बताएं कि भूतकाल का वर्तमान पर कोई असर नहीं है और वर्तमान का भविष्य पर पूरा असर है, ये वाक्य है। अब विचार करो इस वाक्य की गहराई में जाकर, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ निकला? जो बीत गया उसका अपने ऊपर कोई असर नहीं है, एक बात, और जो वर्तमान है उसका अपने भविष्य पर असर है। आ रहा कुछ समझ में? इसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। फिर अगर इसका दूसरा पक्ष निकाले अपन, देखो नए दृष्टि से सब में से समाधान निकाल सकते हो, अन्य मतों की हर बात सच निकल सकती है अगर अपन स्यादवाद नए लगाए तो। ईश्वर के बिना पत्ता नहीं खड़कता, ये एक दृष्टांत था ना, याद हो आपको, कभी पहले हमने बताया था, ईश्वर के बिना पत्ता नहीं खड़कता। अब निश्चय नए से, निगोद से लेकर जितने भी जीव है, सबवे सिद्ध समाना शुद्ध नया संसिधि जीव, तो संसारी जितने जीव है वो सब सिद्ध भगवान के समान है, तो सिद्ध भगवान भगवान है, तो भगवान की इच्छा के बिना या भगवान के बिना पत्ता नहीं खड़कता। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु का एक जीव जो है वो भी निश्चय से भगवान है और वायु के बिना पत्ता नहीं खड़कता, इसलिए भगवान के बिना पत्ता नहीं खड़कता, हो गया ना। विवक्षा ऐसे लगाओ, लेकिन ऐसे विवक्षा लगाने से अपन उस बारीक सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो गुरुओं ने क्रम दिया है कि इस प्रकार से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों से लेकर के चलो आगे, तो रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। और आप अगर थोड़ा सा टेढ़ा चलने की कोशिश करो, वैसे ही पंचम काल बहुत टेढ़ा है, और आप और टेढ़ी बुद्धि बना लो तो फिर मुश्किल है, फिर तो ऐसी उलझन हो जाएगी कि जीते जी फिर उस उलझन से बाहर आ पाना मुश्किल है। जन्म जन्मांतरों में भी कभी कोई ऐसा योग बने तो निकल जाओ, वरना संसार भ्रमण जारी रहेगा। फिर इन 5 भावों में कौन से भाव कितने प्रकार के हैं उसका कथन, तो औपशमिक भाव 2 प्रकार का, सम्यक्त्व और चारित्र। फिर क्षायिक भाव 9 प्रकार का, सम्यक्त्व चारित्र के साथ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। यहां तक अपन ने स्वाध्याय किया था, और इसमें अपन ने ये देखा कि क्षायिक भाव में क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग आदि जो भी वर्णन था मूल टीका में, उसके मुताबिक भगवान के पास जो क्षायिक लब्धियां होती है वो कुछ काम जरूर करती है, ऐसा नहीं कि वो उनकी आत्मा के अंदर पड़ी रहती है, वो क्षायिक लब्धियां जो होती हैं उनसे बहुत काम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लिखा था, अनंत प्राणी गणानुग्रह करम क्षायकम अभयदानम। दानांतराय के क्षय से अनंत प्राणियों का हित करने में